मैं भी वहां गया, देखा। मूल बात है कि हर डाकू से मैंने पूछा कि आप अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। बड़े प्यार से कहता हूं, हर डाकू कहता है वो कुछ भी बने लेकिन डाकू नहीं बनाना चाहता। जा देखिए माता पिता की बात, अब पेपर में पढ़िए, चंदन चोर वीरप्पन है, उसका लड़का बेंगलोर में इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, चंदन चोर। अब जो यही बात है, आज पूरा दुष्कार आ, क्या भारत की संस्कृति है? किसी परिस्थिति पर मैं डाकू हो गया लेकिन मैं अपने पुत्र को डाकू बनाना नहीं चाहता। किसी परिस्थिति पर मुझे झूठ बोलना पड़ा लेकिन बेटे से कहता, बेटा तू झूठ मत बोलना। ये हमारी एक संस्कृति है। अब फिर से जगत गुरु कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ विचार, पहले आप अपनी रक्षा करें। उस बात को केवल मैं इशारे से करूंगा क्योंकि बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, अर्थ का अनर्थ न हो जाए। विश्वामित्र ने चांडाल के घर से कुत्ते का मांस चुरा कर खाया। पहले विचारक इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन नहीं, एक अच्छे व्यक्ति का जीवन की रक्षा होनी बहुत जरूरत है। आप सब पढ़े लिखे हैं, मेरे इशारे को समझिए। आप अच्छे, आप बचोगे तभी परिवार बचेगा और देश बचेगा। आप कहें स्वामी जी आप क्या इशारा कर रहे हो? अभी अभी तो मैंने अपने ऊपर कहा ना, आप अच्छे लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप भी अपने को बचाने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका बचाव समाज में उत्थान की बात करे, पतन की बात ना करे। मैं कहता हूं आप झूठ बोलो लेकिन झूठ से परिवार समाज का भला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जेल में पहुंच जाऊं। करो, ये कृष्ण की विचारधारा। किसने जो कुछ अर्जुन के माध्यम से किया, आज पूरा विश्व उसका स्वागत कर रहा है। यही मैं आपसे कहता हूं। अब उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नरवा कुंजरो, कुछ तो सत्य है, बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा। अश्वत्थामा नाम का हाथी तो था, तो आपसे कहता बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा, सच के आधार पर झूठ भी चल जाएगा, तर जाएगा। लेकिन उसके पीछे लक्ष्य है समाज और देश को बचाना, और आज जो हम कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए नहीं कर रहे। कृष्ण अपने को बचाने के लिए नहीं, अर्जुन समाज और देश बचे, बस इतना फर्क हो गया कृष्ण के समय में और आज के समय में। आज मैं अपने को बचाने के लिए दुनिया भर की बातें कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण ने एक अच्छे व्यक्ति को, अक्सर मेरे पास सब तरह के लोग हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं, मंत्री भी हैं, सब है। जब मेरे सामने कोई बात आती है तो मैं यही कहता हूं, आप सुबह सुबह को जबरदस्त संघर्ष सहन करना पड़ता है, बिगड़ से बिगड़ परिस्थिति में जाना पड़ता। कृष्ण की बात ले लीजिए, कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के, लेकिन फिर भी एक से एक तकलीफें आई हैं, उन तकलीफों को दूर किया। आप अच्छा विचार, यही आपका कृष्ण है, आपका सारथी है पिंड में। कई बार लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छे संत नहीं मिलते, का वो मिल जाएगा? लेकिन आपका जो अच्छा विचार है पहले वही सारथी आपका है। आज आप लोग आए कहां कहां से आए, आपका आमंत्रण मिला हंसुक भाई बगू भाई पटेल से, महेश भाई बगू भाई पटेल से, परिवार से, बालू भाई से, आपको एक आमंत्रण मिला और आपके अंदर सुविचार आया, आने में शायद कहीं थोड़ी दिक्कत भी हो, समय में थोड़े देर हो गए हो, लेकिन आपको यहाँ आना था तो आए, आपका विचार लाया। अभी आप बाहर कुछ मत ढूंढो। अक्सर लोग मेरे पास आते कहते हैं स्वामी जी मुझे किसी अच्छे इंसान का दर्शन करना है, बताइए। मैं बड़े प्यार से कहता आप भी तो एक इंसान है, पहले अच्छे बन जाओ फिर ढूंढो। क्या आप अच्छे नहीं बन सकते? अरे मेरे पास आकर लोग क्या क्या बात करते बताऊं आपको। एक ही उदाहरण दूंगा जहां समझ जाएंगे कि हमारे अंदर कितना कचरा जो है भरा हुआ। हम जो होना चाहते हैं उसकी जगह दिखाना कुछ और चाहते हैं, बस वहीं पर परेशानी हो जाती है। जो कचरे की बात बताता हूं आपको, स्वामी जी आपके पास कुछ ऐसा मंत्र है कि हमारी स्पर्धा में चलने वाला बहुत आगे बढ़ गया, कोई ऐसा तावीज दीजिए उसके घर में डाल दूं और वो छोटा हो जाए। कितना कचरा। मैं कहता ऐसी तावीज क्यों नहीं ले जाता, उसके दो मालती तेरे पास चार मालती हो जाए, उसके पास चार बंगले हैं तेरे पास आठ बंगले हो जाए। इसी पर एक कहानी है। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि जा तू मुख्यमंत्री बन जा। दूसरा चेला आया, सेवा खुद किया, कहे बेटा तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, तू क्या मांगता है? कहा गुरु जी जो मैं मांगता हूं आप दोगे? कहते जरूर दूंगा, कितनी अच्छी मेरी सेवा किया। कहा गुरु जी मेरे पड़ोसी को आशीर्वाद दिया है कि मुख्यमंत्री बन जा, मुझे बनना कुछ नहीं है, होना भी कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरी बात माने तो आशीर्वाद वापस ले लें, क्योंकि पड़ोसी मुख्यमंत्री बनेगा तो सारी जिंदगी उसको देख करके मैं जलता रहूंगा। ईसा राघवे से आ तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। जा विचार करो, जो अपना भला नहीं सोच सकता दूसरे का भला क्या सोचे। इसलिए सबसे पहले अपने अच्छे विचार को अपना गुरु बनाओ। कुछ भी हो जाए बात तो कृष्ण है, लेकिन विचार गुरु की बात जो आचार्य जी का बड़ी सुंदर बात है उसी का मैं विशेषण कर रहा हूं। स्वागत प्रवचन में जो और ये विचार की शक्ति देखिए, ये विचार आपका गुरु जो अच्छा विचार है कहां से कहां पहुंचा देता है। और अगर विचार शुद्ध नहीं हुआ शुद्ध हुआ तो विचार आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए शुरू में कहा था विचार ही जीवन है, अब विचार ही मृत्यु है। आपको उदाहरणों का वैज्ञानिक उदाहरण दूंगा, विचार में कितनी जबरदस्त शक्ति है। आप में जो हकारात्मक बात है उसका कितना असर है और नकारात्मक जो बात है उसका कितना असर है, ये जापान में भी प्रयोग करके देखा गया और आज भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जापान का एक प्रयोग है बहुत संक्षेप में, कंप्यूटर से सारी व्यवस्था की गई, एक आदमी मिलने आता है, कंप्यूटर की व्यवस्था से घास में से उसे लाया जाता है, मैं उसके साथ हूं, मेरे इशारे पर कंप्यूटर चल रहा है, घास के क्षेत्र में आता है तो कंप्यूटर के माध्यम से वो नाक देखता है, नाक घबरा जाता है। फिर मैंने इशारा किया तो वहां पर चूहा आ गया। हमने पूछा कि भाई पहले तो डर गया था किस बात से? कहा स्वामी जी आपने नहीं देखा कि नाग था तो फिर अभी क्यों निर्भय हो गया? कहा वो तो मेरा भ्रम था, नाग नहीं था चूहा था। एक विचार आया नाग, क्योंकि आपके संस्कार में एक नाग जहरीला होता है। फिर तुरंत दिखा दिया गया चूहा, आप जानते हैं चूहा काटे बेगा तो कुछ होने वाला नहीं। या विचार कीजिए, एक विचार से आप दुखी हो गए और एक विचार से आनंद में आ गए। एक क्षण में ही, लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ हमारा शास्त्र कहता है सब में नारायण है, तो आप डरते किससे? अगर सब में नारायण है तो डरते किससे हैं? इसका मतलब आपने स्वीकार ही नहीं किया, आप समझे ही नहीं। इसलिए अक्सर कई बार कहता हूं हमारे देश को गरीबी से इतना नुकसान नहीं है जितना अज्ञान के कारण नुकसान है। हम किसी पंथ के हैं, किसी धर्म के हैं, लेकिन ये तो मानते हैं कि मेरा भगवान सब में है, तो आप किससे लड़ रहे हैं? अपने भगवान से? इसका मतलब जाने ही नहीं, समझे नहीं। एक विचार की बात बताएं, आपकी आज की बात बताएं, हम आप आए, शरबत पीते हैं, काफी पीते हैं, दूध पीते हैं, और किसी ने कह दिया कि दूध में छिपकली सुबह गिरी थी, भूल से उसकी चाय बन गई है, तो कल का नाश्ता भी निकल जाएगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बहुत अच्छा दूध पिया के विचार आपको जीवन दे रहा है, मैंने बहुत अच्छा दूध पिया ये विचार आपको जीवन दे रहा है। अब किसी ने कह दिया स्वामी जी रात में दूध में छिपकली गिरी थी, मर गई थी, मालिक ने कहा था कि दूध फेंक देना, लेकिन मैं रात में फेंकना भूल गया, अभी पता चला वही जिसमें छिपकली मरी थी उसी दूध की चाय बना दिया, देखो स्वामी जी की हालत क्या हो जाए। यही अभी तक नहीं कुछ हुआ, चाय तो मैंने सुबह 6 बजे पी थी, अभी 10 बजे तक नहीं कुछ हुआ, तो ये 10:02 में क्या हो गया विचार? इसलिए हमारे सभी संतों ने कहा कि आपका जो शुभ विचार है ये आपका जीवन है। राम शुभ विचार में है, रावण अशुभ विचार में, इस अशुभ के पास भी सब कुछ है। अगर व्यवहारिक ढंग से देखें तो अवतारवाद का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि से कुछ बात बता रहा हूं। राम के एक सिर है तो रावण के 10 सिर, सोने की लंका है, उस लंका में एक से एक सुंदर उसकी पत्नियां हैं, मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन विचार की गड़बड़ी से, और आज विज्ञान यही कहता है। या सोचो पहले हमारा पतन अंदर होता है विचारों से, पहले हमारा पतन अंदर होता है और फिर बाहर प्रकट होता है। मेरे मन में चोरी की बात आई, अब अवसर देख रहा हूं कि यहां से लोग उठ के जाएं और माइक चुरा के ले जाऊं। आपका पतन तो पहले हो गया है, तो अवसर की बात है। रावण इतना विद्वान सब कुछ है, अशुभ क्यों है? तो उसका विचार अशुभ है। इसी अशुभ विचार के कारण वो जानता है, जब सीता हरण के लिए जाता है तो बिल्ली की तरह कांप रहा है, क्यों कांप रहा है? वो जानता है, उसके मन में विचार है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, उसको किसी की साक्षी क्या जरूरत है? कई बार हम भी देखे, हम भी गलत काम करते हैं तो हम आपसे नहीं डरते, हम अपने आप से डरते हैं कि कोई देख लेगा तो क्या होगा, देखे कि ना देखे, लेकिन विचार तो आया, ये अशुभ विचार आपको डरा रहा है, बाकी डरने की क्या जरूरत है? राम ने सब कुछ किया लेकिन उनकी निर्भयता में, पवित्रता में, शुद्धता में एक से एक परिस्थिति आई। रावण के पास सब कुछ है लेकिन गलत विचार आया, सब विनाश हो गया। तो पहले हमारे अंदर पतन होता है फिर बाहर आता है। या देखो अर्जुन हताश बना, वो भी एक विचार था, और कृष्ण एक विचार दिया तो हताशा गई, निराशा गई, और मनोविज्ञान यही कहता, हम आप जीवित हैं, हमारी हताशा हमारी निराशा ही मौत है, बाकी वो मौत कोई मौत नहीं है। आप जीते जी आप, वही तो बता रहा हूं राम और कृष्ण से, यहां जितने बैठे हैं नर या नारी के रूप में, बात तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन आज इस मंडप में मकर संक्रांति पर अपने गुरु अपने संत मनीषानंद का जो जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया, तो विचारों का जन्म आपके अंदर देना चाहता हूं। और आज इस मकर संक्रांति पर हमारी भारतीय संस्कृति कहती है आज से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, ये सूर्य तो हमेशा सूर्य रहेगा, व्यवस्था में दक्षिणायन होता रहेगा, लेकिन मनीषानंद कहते अगर आज आपके मन में अच्छे विचार का जागरण हो गया, उदय हो गया, जन्म हो गया, तो आपके जीवन में कभी दक्षिणायन नहीं आएगा, हमेशा उत्तरायण ही रहेगा। ये जगत की व्यवस्था में तो होता रहेगा। अब ये विचारों का संबंध कहां से है? कृष्ण के पास दोनों गए, पहले दुर्योधन गया, कृष्ण सो रहे सिर के पीछे बैठा, अर्जुन गया कृष्ण के पांव के सामने बैठा, कृष्ण जागे। और आप सब कुछ जानते हैं, मैं तो मनोवैज्ञानिक बात करना चाहूंगा, कहानियां तो हर तरह से आप जानते हैं। कृष्ण ने कहा कहो अर्जुन कैसे आया, फिर दुर्योधन कहता मैं भी आया हूं, अर्जुन से पहले आया हूं, भगवान ने ऐसे देखा, कहे बोलो अर्जुन पहले मैंने तुझे देखा, अधिकार तुझे पूछने का है, जी मैं इसलिए आया हूं। दुर्योधन आप किस लिए आया? काम मैं भी इसीलिए आया। अच्छा पहले मैंने अर्जुन को देखा, अब अर्जुन आज भी तो यही चलता है कि जो टास्क जीतता पूछा जाता है कि भाई तू क्या करेगा, फील्डिंग करेगा कि बैटिंग करेगा, और प्रथा किसी न किसी तरह आज भी चल रही है। मैंने पहले अर्जुन तुझे देखा, तुझे अधिकार देता हूं, एक तरफ मैं रहूंगा एक तरफ मेरी सेना रहेगी। दुर्योधन माथा पकड़ा, ये बड़ा ही चतुर है, ये अर्जुन को बहुत प्यार करता है, और अर्जुन कहता प्रभु मैं आपको आपसे मांगा। दुर्योधन खुश हो गया कि सारी सेना मेरे पास रहेगी तो ये क्या कर सकेंगे, ये सारा जगत जिसकी माया से चल रहा है वो मायापति आपका हो गया, तो जगत कितना भी आपका विरुद्ध जाएगा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप प्रभु के हो जाओ, जगत आपका हो कि ना हो लेकिन आपको तकलीफ देगा, दिक्कतें पैदा करेगा लेकिन आपका विनाश नहीं होगा। दुर्योधन मांग तो लिया लेकिन प्रभु को नहीं मांगा। रावण ने सारी सिद्धियां मांगी लेकिन प्रभु की कृपा नहीं मांगी। जा सोचो मनोविज्ञान क्या कह रहा है, आपने ईश्वर को स्वीकार किया ना, मैं भक्ता परिषद की बात जो गीता में आई है वही आज भी कह रहा हूं, तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, क्योंकि विज्ञान कहता है ये भी विकास का क्रम है। छोटी छोटी बातों को ले लीजिए, आप इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, कपड़ा किस तरह बना, फिर दर्जी के पास गए किस तरह उसने सुडौल बनाया, फिर आया अबे कपड़ा कहे कि दर्जी तू कैंची से क्यों काटता है, आपका तर्क ठीक है लेकिन वास्तव में सुंदर बनाने के लिए इस विधि को अपनाना पड़ेगा। आप अच्छे अच्छे को और अच्छा बनाने में थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, जो जन्म की बात है। एक एक कदम पर जितना अधिक अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहोगे सहन करना पड़ेगा। सहन करने के बाद ही प्रसव की पीड़ा सहन करने के बाद ही अगला जन्म होगा। एक किलो लोहे की ले लो, थोड़े हथौड़े खाता है तो चाकू का जन्म होगा। और अधिक और अधिक और अधिक 3 महीने तक प्रोसेस चलेगी तो हवाई जहाज का नट बढ़ेगा। जो मूल में लोहा 30 रुपया किलो है, एक नट 2000 का हो जाता है। कितनी 3 महीने तक प्रोसेस गई, विधि गई। कि आपका प्रश्न अक्सर मेरे सामने आता है, आप अच्छे हैं और आपके मन में क्या आता है? मैं अच्छा हूं, ये परेशानी क्यों? वही अच्छा अर्जुन युद्ध से भाग रहा है, लेकिन भगवान बता रहे नहीं, ये करना पड़ेगा। अभी अभी आप के सामने रखा सब में नारायण है, ये आपका समाधान कर लो, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। स्वामी जी आप कहते हैं सब में नारायण है, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? फिर विज्ञान आ गया, राम ने कोई समस्या नहीं पैदा की, समस्या रावण ने पैदा की। पांडवों ने कोई समस्या नहीं पैदा की है, कौरवों ने पैदा की है। अब फिर मनोविज्ञान विज्ञान आ गया, हम आप समस्या के हल करने में हैं, इसलिए समाज देश की समस्या हम डॉक्टर कलेक्टर संत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर करना चाहते हैं। हम आप देश की समस्या हल करने में हैं, इसलिए तैयारी में जबरदस्त विरोध सहन करना पड़ेगा। हम आप सुबह और समस्या पैदा होती रहेगी। राम के समय में रावण था, कृष्ण के समय में कंस था, आज भी तो समस्या पैदा करने वाले हैं। कभी राक्षस बोला, कभी आतताई बोला, आज आतंकवादी होंगे और होते रहेंगे। मैं आपसे कहता हूं, जब तक हम आप जीवित हैं किसी न किसी तरह से समस्याएं आती रहेंगी। हम आपको समस्या हल करने की बात बता रहे हैं, समस्या से भागने की बात नहीं। कृष्ण ने समस्या हल करने की बात अर्जुन को बताया, नहीं तो अर्जुन तो कह रहा था कि मैं आपका स्मरण करूंगा, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन यहां समझ की बात है, समझ करके निर्णय नहीं लिया, हताशा निराशा में। आज मनोविज्ञान कहता है भगवान का नाम लो। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहे स्वामी जी मेरा विचार है सन्यासी बन जाओ। कहा क्यों? कहा नौकरी नहीं मिली। अरे कई बार तो लोग कहते हैं अच्छी लड़की नहीं मिल रही इसलिए सन्यासी बन गए। अरे क्या? और फिर मैंने कहा साधु बनने के बाद कोई मिल गई तो फिर मेरा कपड़ा उतार के चला जाएगा। बड़े प्यार से कह रहा हूँ, घर में बोल रहा हूँ। अरे मैं लोगों की बातें सुनता हूँ तो बुरा न मानिएगा, उनकी बातें सुनकर और जबरदस्ती सन्यासी बन जाता हूँ। अंदर का जो कचरा है, भगवान ने हमें आपको कितना सुंदर बनाया, लेकिन अंदर कचरे की बात करूं तो आप समझ जाइए, आप जानते हैं ऐसी बात की नहीं जानते। मैं आपका संत इसलिए कह रहा हूं, ये जो विचारों की बात कर रहा हूं, जा सोचो। अर्जुन को संन्यास की बात आई, पलायन बात आई, एस्केपिज्म की। कब आई? भगवान कहते जब तू मेरे पास आया था क्या विचार था? हमारी आपके बात। मैंने कहा एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ सेना रहेगी, उस समय विचार किया, मुझे क्यों मांगा? कितनी सुंदर बात, इसको समझिए। फिर भगवान कहते मैंने कहा मैं क्या करूंगा, तूने कहा सारथी बनू, तो तेरे कहने से सारथी बना। फिर मैंने कहा कि रथ को किधर ले चलूं, मैं कहां लाया हूं यहां, तूने कहा दोनों सेनाओं के बीच में। अब हमें आपको समझना है, हमने भगवान को मांगा, ये हमारी आपके बात, भगवान को सारथी बनाया, भगवान मांगा, भगवान को सारथी बनाया, और जब जिम्मेदारी आई तो कहते हैं मनीषानंद जी मुझे चेला बना लो। ये पलायन बात नहीं तो और क्या, यही कृष्ण बता रहा। जब मैं तेरा साथी बना तो उसी समय कह देता कि मुझे कुछ परमहंस संत के पास ले चलो, नहीं लड़ना है, रोटी मांग के खाऊंगा। ये मैं आपसे कहता हूं, जिसके निर्णय में कमजोरी है उसमें कभी सुंदर फल लगने वाला नहीं। आप सन्यासी बनो लेकिन समझ कर, पत्नी मर गई, घर खाक हो गया, कोई पूछता नहीं, जाके देखो हरिद्वार में नदी के किनारे हजारों लोग बैठे हैं, हम लोग भी वहां हैं, लेकिन हम समझ के सन्यास लिए, साधना किए, हमारी बात देखी है और इशारा कर रहा हूं, नदी के किनारे हजारों लोग बैठे हैं लेकिन 20 बरस से भीख ही मांगने और कुछ नहीं करते। बड़े बड़े मंदिरों के सामने हमारी संस्कृति हम दे देते हैं, आज बाहर वाले भी कहते हैं बिल्कुल निकम्मा बन जाओ, भारत चले जाओ, रहने की जगह दो रोटी मिल जाएगी। भारत इतना अच्छा है कि निकम्मे से निकम्मे को भी सोने की जगह और दो समय की रोटी तो दे देगा, इतना अच्छा है भारत। ये बाहर वाले का जा विचार करो। अब वही ये अर्जुन वाली बात, भगवान कहते तूने मुझे साथी बनाया और मैंने पूछा किधर चलूं, तूने कहा दोनों सेनाओं के बीच में, तो अब क्यों भाग रहा है भाई से जो पलायनवादी बन रहा है। बच्चे मेरे पास आते स्वामी जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा विचार है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बहुत सुंदर विचार है, मैं मंत्री होना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी है लेकिन स्वामी जी सुविधा जरा चाहिए। अब मैं आपसे यही कहता हूं, आज पूरा मनोविज्ञान आ गया, एक जबरदस्त बात आपको मनोविज्ञान की बताऊंगा, हालांकि उसके पीछे कर्म है लेकिन विज्ञान एक जबरदस्त बात कह रहा है, बड़े प्यार से कह रहा हूं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट की बात हो, गांधी की बात हो, विवेकानंद की, टैगोर की, अरुण घोष की, पीर की, पैगंबर, किसी की भी बात, कोई फकीर की हो, संत की हो, आज जो आप देख रहे हैं उसके पीछे जबरदस्त भूमिका है, सुविधा की नहीं असुविधा की। कौरवों के पास बहुत सुविधा थी, रावण के पास बहुत सुविधा थी, व्यवहारिक दृष्टि से देखिए तो राम के पास केवल विचार, सुविधाएं इतनी नहीं थी। अर्जुन के पास एक अच्छा विचार देने वाला कृष्ण था, बाकी सुविधाएं इतनी नहीं थी। तो मनोविज्ञान क्या कहता है वो थोड़ा बता दूं फिर चलूं, यहां किसी का खंडन नहीं है, समझना है, बड़े प्यार से कह रहा हूं, यहां गुरुओं का खंडन नहीं है, एक बात है। पितामह जब बाण सैया पर लेटते हैं वो कहानी आप जानते हैं, आज का मनोविज्ञान क्या कर रहा है, पितामह पूज्य जब बाण सैया पर लेटता है सोता है, इतने बाण उसके शरीर में चुभे हैं, इतने कष्ट में, धर्म की जितनी सुंदर बात किया है कभी नहीं किया। इस बाण सैया के कष्ट में ही पितामह ने धर्म की बात जो सुनाया है इसके पहले कभी नहीं सुनाया। अब इसी का आधार लेकर आपका मनोविज्ञान क्या कहता है, असुविधा में कष्ट में आपके विचार खिलते हैं, सुंदर बनते हैं, और जिनको सुविधाएं प्राप्त हैं 90% उनके विचार अच्छे नहीं होते। जैसे रावण की बात आई, दुर्योधन की बात आई, ये आज भी लागू हो रहा है, आप जैसे अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं देख रहा अब खास करके बच्चों से कहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुविधा सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक बात दे रहा हूं।